So, anything you'd like to ask us?
तो ऐसी कोई बात जो आप पूछना चाहें या आपको नहीं समझी हो?
आपने अपने व्याख्यान में
जी
जिप्सी लोगों की
हाँ
तो जिप्सी और जो इजिप्शियंस जो हैं उनमें आपस में कोई तालमेल है क्या? इजिप्शियन का है वो जिप्सी है.
You talk about the gypsy. You want to know what is the connection of the gypsies? Is it related with the Egyptians?
Egyptians. Yeah. When they came to Europe, people didn't know where they came from.
जब वे यूरोप में गए कई साल पहले तो उनको नहीं मालूम था कि वो कहाँ से आए.
And they didn't know any Asian countries at that time.
उस वक्त जो एशियाई जो देश है उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी.
But they knew about Egypt.
लेकिन वे इजिप्ट के बारे में जानते थे.
So they said, we come from Egypt.
तो वो कहते थे कि हम इजिप्ट से आए.
So that's how they got that name.
तो जो केवल नाम जो है या नामकरण उसके कारण हुआ.
Gypsy is like short form for Egypt. Egyptian.
Egyptian जो लोग होते हैं जैसे भारत है तो भारतीय कहते हैं. इजिप्ट को रहने वालों को इजिप्शियन कहते हैं.
Yeah.
तो उनका छोटा नाम जिप्सी हुआ.
Yeah, but they're nothing to do with Egypt.
लेकिन उनका कोई यानी संपर्क नहीं है या मतलब नहीं है कोई कनेक्शन नहीं है इजिप्ट के साथ.
तो वो वहाँ कब पहुँचे?
This one the fulfilled intention for you when normal people
are into the same others. Yeah, there's some theory that it's not really known where they came from.
तो सही मायने में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो पहुँचे तो उन लोगों को ज्ञात नहीं था कहाँ से वो आते.
But it's thought that when the Muslim invaders came, particularly Muhammad Ghauri, that whole populations were displaced.
तो 10वीं शताब्दी में जब मोहम्मद घोरी ने आक्रमण किया था तो ऐसा कहते हैं कि तब के जो लोग थे वो वहाँ से दूसरी ओर चले गए.
And so they went up into Jalin, up into Afghanistan.
तो अफगानिस्तान की ओर वो लोग ऐसे आगे बढ़े जब वो लोग
then through Iran, Persia. Yeah.
फिर ईरान पर्शिया में वो लोग माइग्रेट हुए.
Iraq, Syria, Turkey.
इराक सीरिया और टर्की की तरफ वो बढ़े.
Then into Greece.
फिर वो ग्रीस में गए.
And then they came even right over to Britain.
तो बिल्कुल इंग्लैंड के बिल्कुल बाजू में वो लोग गए.
And scholars have been able to look at the language they speak.
और जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इसकी छानबीन की कि कैसी भाषा है वो बोलते हैं.
Because as they were traveling, they picked up words from the local languages.
क्योंकि जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ते जा रहे थे तो जो वहाँ की जो लोकल भाषाएं थी उनके शब्द वो उठाने लगे.
So the basis of the language was very early Hindi.
लेकिन उनकी जो मूल भाषा यानी भाषा का जो मूल है वह हिंदी से.
But there's Punjabi words, Afghani words, Persian words, Arabic words, Turkish words,
so
Greek words.
ये yeah. जो भाषाएं उन्होंने बताई यह सब भाषाओं के शब्द उनकी भाषा में मिलते हैं.
But a very interesting fact some scholars have discovered.
लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है जो विद्वानों ने खोजे हैं.
The language spoken by the gypsies preserves some forms, some grammatical forms.
तो जो व्याकरण जो हम बोलते हैं व्याकरण का जो प्रकार है वो विद्वानों ने कुछ खोजे हैं.
And those forms are only spoken still in Kannauj.
और उसके जो व्याकरण के जो प्रकार है अभी भी कन्नौज में मध्य प्रदेश में कन्नौज में बोली जाती है.
And the Kannauj was completely cleared of Buddhists by Muhammad Ghauri.
और इस बात को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कन्नौज में जो बौद्ध जीवन था वो पूरी तरह यानी खत्म किया था मोहम्मद घौरी ने.
So it may be that these people were formerly Buddhists who been chased out of India.
हो सकता है कि वहाँ के वो मूल बौद्ध लोग जो ऐसे आक्रमण के कारण वो वहाँ से चले गए.
But they have no memory of India at all.
लेकिन उनके याद में भारत नहीं है.
इसकी जरूरत नहीं है.
Yes, our friends, our Dhamma Mitras, who are connected with our order, have started a movement in Hungary amongst gypsies called the Jaibim Network.
So, वहाँ के कुछ लोग जो थे वहाँ हमारे संपर्क में आए और वो धर्ममित्र बने और उन्होंने फिर कुछ आंदोलन किया और उसका नाम उन्होंने जयभीम नेटवर्क दिया.
And they've started the Dr. Babasaheb Ambedkar Gymnasium, which means high school.
फिर वहाँ पे ये प्रेरणा लेके उन्होंने एक स्कूल प्रस्थापित किया हंगरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल.
And it's for the gypsy children, gypsy young people, 14, 15, 16, who've had no schooling.
तो अगर 14-15 साल तक वो जिप्सी जो लोग जिनको कोई शिक्षा नहीं मिलती.
Some of them came to India 4 years ago.
चार साल पहले उनमें से कुछ लोग भारत आए थे.
So the connection is growing again.
तो वो जो अभी संपर्क है वो पुनर्प्रस्थापित हो रहा है.
It's very inspiring, isn't it? That Baba Sahib is giving people freedom and progress even in Europe.
बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पुराने जो अपने संपर्क है वो बाबा साहब से उठा रहे हैं, उनसे वो संपर्क जोड़ रहे हैं.
तो क्या आप सहमत हैं कि वो यहीं से कन्नौज से गए हैं?
He's saying,
so do you feel that they are originally from Kannauj? It is the inference of.
I think it's it can only be a guess.
It could.
Yes.
How is that? क्या है केवल अंदाजी बांध सकते हैं इतिहास में?
But why not?
Why not? It could be.
Yes. Last time I said, what time is it? प्रारंभिक डेट कब तक जाती है? तो पता है?
Historically, 10th century.
10th century.
Yeah. Yeah.
So let me mention, if you allow, for this historian friend and also for you, that maybe I am having some connection with those gypsy people. If they are from Kannauj, in our caste system in India, every caste is having 7 or 10 gotra.
Yeah.
So in particular community of Chamars in India, they are having 7 gotra. One of them is Kannaujia.
Kannaujia.
And then Jaiswal.
So
very surprisingly, even the castes are different, but in the two different castes, gotras are same. Maybe the gotras belong to the particular place, because initially gotras were made on the basis of place or some famous person of that clan. So we'll discover through the friendship with the
people.
Very interesting. कि हमारे जो जातियाँ होती है उसमें अलग अलग गोत्र होते हैं, तो भले ही वो अलग अलग जातियों के नाम रहे कि उनके गोत्र समान ही होते थे, जैसे कनौजिया हो गए, जायसवाल हो गए, तो हो सकता है उनमें से भी ऐसे कुछ गोत्र हो जो वो वहाँ चले गए हो, तो हम उनके संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं.
Castes are different, but the gotras are common.
Yeah.
They may be the people from the
from
same
that
place
particular area,
or same clan. They So that historian friend will help us to find.
His job now.
Thanks for giving me the.
They tended to be either metal workers or musicians.
उनके दो प्रमुख यानी व्यवसाय हैं. एक तो धातु का काम करते हैं या फिर संगीत.
And they definitely have a sort of caste system amongst them. More like clans or even upajati, that sort of thing.
Upajati,
yeah. It's very interesting.
That's the biggest proof that they must be from India.
Yeah, exactly. It's a major Indian export, caste. So anything else interesting?
कोई कुछ सवाल जो बोले सुबुदी बौद्ध धर्म के बारे में, संघ के बारे में, या जैसे बाबा साहब की दृष्टि के बारे में बोले, ऐसा उसमें से कुछ? हर बात समझ गई आपको? They are very clear.
एक क्वेश्चन, तल्लुक महासंघ के आप सुबुदी जी उसमें सामान्य सदस्य हैं या उसके कुछ पदाधिकारी हैं?
He's saying, Subhuti ji, are you holding any post in Talak Bodh Mahasangha? Are you just an order member?
I'm one of those who gives ordinations.
तो मेरा एक प्रमुख कार्य है जो मैं यानी दिशा देता हूँ.
At the heart of our movement is a group of about 30 senior members of the order who are qualified to ordain others.
तो जो यानि संघ का जो केंद्र स्थान जो होता है या जो संघ जो होता है उनमें से कुछ वरिष्ठ धर्माचार्य होते हैं जो दीक्षा देने का काम करते हैं.
So I'm one of those.
तो ऐसे 25 और 30 कुछ पूरे विश्व के सीनियर ऑर्डर मेंबर हैं जो देश हैं उनमें से मैं एक.
5 years ago, I was the chairman of that college.
तो वो जो एक कॉलेज है उस कॉलेज का मैं 5 साल पहले चेयरमैन था.
But I gave that up 5 years ago.
लेकिन 5 साल पहले मैंने वो काम छोड़ दिया.
Somebody else is doing that work now.
कोई दूसरे लोग वो काम करते हैं.
But perhaps I used to work very closely with Sangharakshita.
लेकिन मैं बहुत करीबी से कार्य कर रहा था संघर्षित जी के साथ.
So I'm probably one of the best known members of our order.
तो शायद ऐसा हो कि मैं पूरे संघ में मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं मैं बहुत जाना जाता हूँ.
I still work quite closely with him.
और अभी भी मैं उनके साथ जुड़ के काम करता हूँ.
But yes, I don't hold any post of power.
लेकिन मैं ऐसे कोई भी पद या अधिकार मैं नहीं रखता हूँ.
And I don't get a big salary, unfortunately.
और मुझे कोई उससे पगार या मुझे कोई पैसा नहीं मिलता.
तो वो कॉलेज की जो बात कर रहे हैं वो कॉलेज क्या लोक महासंघ का.
Is that college belongs to the...
It's a confusion of terms. It's not college in the sense of a building.
तो कॉलेज का यह अर्थ मैं बताता हूँ कि वो एक विद्यालय के रूप में कॉलेज नहीं है.
Council would be the better word for a council.
Yeah. उसे हम काउंसिल कह सकते हैं.
And it consists, I should stress, it consists of men and women equally.
लेकिन यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वहाँ स्त्री और महिला और पुरुष दोनों भी हैं.
And there are Indian members of that council.
और भारत से भी उस काउंसिल के सदस्य.
तो एक और सवाल, क्या आप धर्माचारी हैं तो क्या आप यहाँ भी जो है दीक्षित कर सकते हैं?
If you are a dhammachari, can you ordain people here?
Yes, indeed. Yeah. Wait a minute. What's precisely the question? I'm qualified to ordain new people into our order.
मुझे यह पात्रता है कि मैं नए व्यक्तियों को दीक्षा दे सकता हूँ.
And that has to be with the consent of the whole preceptors. Council.
लेकिन उसके लिए सबका एक मत या जो काउंसिल का जो मत होता है उसको भी देखना होता है.
And there's a process of preparation.
और उसके लिए प्रक्रिया है उनको तैयार करना चाहिए.
We need to see people have done a certain amount of study that they prepared themselves fully.
क्या उन्होंने पर्याप्त मात्रा में अभ्यास किया या उनसे अभ्यास करवाया जाए ताकि वो धम्म बता सके.
Not academic study, but study of the Dhamma, so they know the Dhamma and can know how to practice it.
तो जो यानी डिग्री जैसा सीखते हैं हम भी है, वैसी शिक्षा ही नहीं लेकिन धर्म की शिक्षा.
We've got at least one Dhammachari who can't read, who's illiterate.
एक धर्मचारी हमें से ऐसा भी है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता.
But you know, he knows enough Dhamma to be able to practice it for himself.
लेकिन उनको इतना धर्म पर्याप्त मात्रा में पता है कि वह स्वयं का आचरण कर सके और औरों को बता पाए.
So we need to prepare people for ordination.
तो उस दीक्षा के लिए लोगों की तैयारी भी करवानी होती है.
But we have a previous ordination.
लेकिन इस दीक्षा के पहले यानी धर्मचारी दीक्षा के पहले एक और दीक्षा है.
What we call Dhammamitra Diksha.
उस दीक्षा को हम कहते हैं धम्ममित्र दीक्षा.
A Dhammamitra is somebody who's been in contact with us for at least 6 months.
धम्ममित्र दीक्षा वह होती है कम से कम 6 महीनों से हमारे सातत्य में जो संपर्क में है.
And who's got real sort of personal connections. Oh, Jayin,
Jayin.
Bhim has come. Jai Bhim. Yes,
ये वो कैमरा है वहाँ पे लगे
रहेंगे.
Ah, yes. So we're just talking about a first step. I'll say a little bit more about this and then come on. Yes, so the first thing is that you've been...
इनको पूरी कर लेना चाहिए जो बोल रहे हैं.
So a Dhamma Mitra is somebody who's been in contact with us for at least 6 months.
So मैं कह रहा था कि धम्म मित्र की दीक्षा वह लेते हैं जो कम से कम 6 महीने में हमारे संपर्क में होते हैं.
And has some real sort of connection with individual order members.
और सही मायने में किसी भी धर्मचारी के साथ उनका एक गहरा संपर्क होता है, genuine contact होता है.
And then is willing to make 3 declarations.
और वह 3 जाहिर बातें कहता है.
First of all, that the Buddha is your teacher.
सबसे पहली बात होती है कि बुद्ध ही हमारे गुरु हैं.
Secondly, that you are practicing the Dhamma.
दूसरी बात होती है कि आप धर्म का आचरण करेंगे.
Especially in the form of practicing the precepts.
विशेषतः पंच शीलों का आचरण करके.
And doing some meditation.
और कुछ ध्यान आपने करना चाहिए.
And studying the Dhamma.
और धर्म का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए.
So that's the second declaration.
तो यह दूसरी बात वह यानी इच्छा के रूप में जाहिर करता है.
And the third declaration is that you feel that TBMSG is a spiritual family you want to go forward with.
और तीसरी बात यह है कि वह जुड़ना चाहता है कि भाई त्रिलोक बौद्ध महासंघ ऐसा एक आध्यात्मिक कुल है जिसके साथ में मेरा धर्माचरण गहरा करो.
Not that you're against any other group or whatever.
इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी भी समूह के विरोध में जाते हैं.
You don't think we're all right and they're all wrong.
हम ऐसा नहीं सोचते कि कोई गलत है और हम सही है या हम सही है और कोई गलत है.
But you know that if you're going to make progress, you need to commit yourself to a particular form of the Dhamma.
लेकिन हमको अगर धर्म की कटिबद्धता गहरी करनी है तो किसी विशेष रूप से हमको धर्म का आचरण सातत्य से करना होगा.
And you need to be a member of a particular community which you're deepening your friendship with.
और आपकी जो मित्रता है ऐसे आध्यात्मिक कुलों से या ऐसे संघ से गहरी होनी चाहिए.
If you want to get water out of a well, you have to drop your bucket to the bottom.
अगर आपको किसी कुएं से पानी निकालना है तो आपको अपनी जो बाल्टी या बकेट है उसको गहरा डालना होगा.
If you drop your bucket halfway down 10 wells, you'll get no water.
अगर 10 कुओं में आपने इतना इतना ही अगर बकेट जो है अंदर डाली तो पानी नहीं मिलता.
You have to drop it all the way down.
किसी भी एक कुएं में गहरी बकेट डालना आवश्यक.
So the third thing you're saying is, I want to drop my bucket down this well.
तो हमें यह महत्वपूर्ण है कि हम चाहते हैं कि इस कुएं में मैं मेरी बकेट गहरी डालूं.
So these are the 3 declarations that a Dhamma Mitra makes.
तो यह 3 मुख्य चीजें हैं जो धर्म मित्र करता है.
So this is a first step into our order.
तो ऐसा कह सकते हैं कि यह पहला कदम है इस संघ
का. And you're sort of saying, here I am, please take notice of me.
तो आप स्वयं यह इच्छा जाहिर करते हैं कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मुझे इस तरीके का धर्म आचरण करना है, मुझे आगे बढ़ना है.
You're saying, I want to be in contact with you, I want to go forward with you.
वो चाहते हैं, वो ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं आपके संपर्क में रहना चाहता हूँ, आपके साथ में और आगे चलना चाहता
हूँ. And if we can, we try to provide special facilities for study and retreat and so on.
और अगर कोशिश हुई तो हम पूरी तरह उनको ऐसे शिविर में और ऐसे धर्म अभ्यास के हम यानी क्या कहते हैं सहूलियत देते हैं.
And you're part of an international sangha.
और उस तरीके से हम इस जागतिक संघ के सदस्य बनते हैं.
And that we are qualified to do anyway.
तो उसके लिए हम योग्य है कहीं भी.
Just 2 days ago, we had Dhamma Mitra ceremonies underneath the Bodhi tree.
2 days पहले हमने धम्म मित्र दीक्षा की बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में.
And it's my great wish that we will have Dhamma Mitra ceremonies here at the place of the Buddha's Parinirvana.
मेरी यह गहरी इच्छा कभी भी रहेगी कि इस महापरिनिर्वाण में ऐसी दीक्षाएं हम लें.
So that we cover the whole span of the Buddha's life.
ताकि बुद्ध का जो समुचय जीवन है उसको हम अपने आचरण से जोड़ सके.
एक और सवाल को मेरा जो सवाल था उसका जवाब मुझे मिल गया, यानी कि त्रिलोक महासंघ का सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें आपने रखी हैं, इसका आंसर आपने अब दे दिया, संतुष्ट हुआ.
आई एम सेटिस्फाइड दैट यू हैव गिवन मी the enough information what I was looking for.
लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल निकल के आ गया.
Just one question related with this information.
आपने जैसे कहा कि भगवान बुद्ध को टीचर मानना हमारे गुरु भगवान बुद्ध, दूसरा जो हमारा आचरण है उसको मानना अर्थात धर्म को मानना, तीसरा हमारा एक और है संघ तो उसके विषय में आपका क्या कहना है भिक्षु संघ जो भगवान बुद्ध ने स्वयं स्थापित किया था उसका और त्रिलोक महासंघ का आपस में क्या लेना देना है
I am quite clear about the Buddha is our teacher and we are practicing Dhamma.
Yeah.
So, Bhikshu Sangha was established by Buddha himself. The Sangha has a weak form. So, what is the relation between the Bhikshu Sangha and this particular Sangha?
Well, let me first say that we understand Sangha to mean all those, whether monk or lay, who are committed to the Buddha's path.
Sangha ka yahi artha hum samajhte hai ki wo bhikshu ya upasak ho jo Buddha ke dhamma ke marg par nikal pada hai.
We don't see it as just the bhikshu sangha.
Use keval ek bhikshu sangha hai isliye wo sangha aisa nahi dekhna chahiye.
Of course, when we go for refuge to the sangha, we're going for refuge to all those who've attained Shratapana and beyond.
तो जब हम संघ की शरण में जाते हैं तो हम उन सभी संघ की शरण में जाते हैं जो श्रोतापन्न या अर्हत या जो संघ के लिए मानते हैं उस संघ की शरण में जाते हैं
But although we have great respect for individual bhikshus, we think it's best not to just respect somebody because they have a robe.
तो जो अच्छे भिक्षु है जो आचरण करते हैं उनके लिए बहुत महान आदर और इस मित्र सॉरी महान आदर हमारे मन में है लेकिन केवल कपड़े पहन लिए इसलिए ही आदर करो यह धारणा नहीं
we think that quite a lot of problems have come in the Buddhist world because of this
क्योंकि बहुत सारी समस्या इसके कारण बौद्ध जगत में निर्माण हुई है
we think that there are bhikshus who lead a genuine committed spiritual life
ऐसे बहुत सारे भिक्षु हैं जो सही मायने में बौद्ध जीवन जीते हैं अब और अपने जीवन को उन्होंने कटिबद्ध किया है धम्म के
and we're very willing to honor them respect them
और मेरी बहुत गहरी इच्छा है ऐसे भिक्षुओं का आदर करने की उनको मान सम्मान देने की
But I'm sorry to say this but we know that many people join the bhikshu sangha in India for
लेकिन इस बात से मुझे बहुत दुख होता है दुख भर से मैं कहता हूँ बहुत सारे भिक्षु ऐसे होते हैं जो केवल पेट के लिए या अपना यानी पैसा कमाने के लिए वो भिक्षु बनते हैं
I'm sorry you know you sometimes see even here people basically beggars but with yellow robe
बहुत सारा हमेशा देखते हैं एक भिखारी का रूप वो धारण करते हैं और भीख मांगते रहते
हैं So we're not please don't misunderstand we're not against bhikshus
तो कृपया इस बात की यानी क्या कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंड को क्या कहते हैं
गलत फहमी में
तो इस कृपया इस गलत फहमी में मत रहिए कि हम किसी भिक्षुओं के विरोध में
I can see Bhante is genuine
मैं देख रहा हूँ भंते जी को भी वो कितने गहराई से आचरण करना चाहते सुनना चाहते
You know, I've lived a long time. I can see people's faces with my eyes.
अब मेरा सारा जीवन इनके मित्रताओं के साथ गया है मैं उनकी आंखों में देख पाता
हूँ to some extent, I can tell if somebody's genuine or not.
और मैं बता सकता हूँ कि यह आदमी कितने धर्म के गहराई में जाते हैं कितना धर्म को जानते हैं
So anybody who wears the robe who's leading a good Dhamma life, I will honor.
कोई भी व्यक्ति जो चीवर धारण करता है और धम्म का आचरण करता है मैं उसका हमेशा आदर और सम्मान
But Baba Sahib himself was quite clear about this.
और बाबा साहब स्वयं इस बात से काफी स्पष्ट थे
He was deeply disappointed with the Bhikshu Sangha.
वह बहुत ही गहराई से नाराज थे भिक्षु संघ के साथ
He spoke very strongly.
और मुझे लगता है बहुत ही उनके दिल में यह दुख था
In his paper, The Buddha and the Future of His Religion, he talked about a huge army of idlers.
Huge army of
idlers. Those are his words, not mine. Idlers. People who are idle.
People doing nothing and just eating and wasting time.
तो बौद्ध धर्म और उनका भविष्य यह जो लेख उन्होंने लिखा यह बिल्कुल जो सुबुद्धि ने जो वाक्य कहा उस वाक्य उन्हीं के ये बाबा साहब के शब्द है कि भिक्षु का ये बहुत बड़ी सेना निर्माण हो गई है जो कुछ करती नहीं कुछ करना चाहिए
And he wanted to reform the Bhikshu Sangha.
और वो चाहते थे कि भिक्षु संघ का एक पुनर्निर्माण
although again I stress there are really good bhikshus many of them
फिर से मैं बार-बार यही कहूंगा कि ऐसे बहुत अच्छे भिक्षु हैं जो धर्म का प्रामाणिकता से आचरण करते हैं
but probably the majority are not really much use
लेकिन बहुसंख्यक जो लोग हैं भिक्षु हैं वो बहुत सारे ऐसा आचरण नहीं करते
and there are many lay people who I honor too
और ऐसे कई उपासक हैं जो भिक्षु नहीं है वह भी बहुत गहरे हैं धर्म का आचरण करते हैं
बाबा साहेब इज प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी
मुझे ऐसा लगता है कि 20वीं शताब्दी के सबसे महान बौद्ध अगर कोई हुए तो बाबा साहेब स्वयं
he was not a bhikshu
वे भिक्षु नहीं थे
but so what we think is we need to come back to spiritual reality
तो हमें क्या करना है वापस हमें आना है हमारे आध्यात्मिक सत्य के पास
the Buddha started things under certain conditions
बुद्ध ने चीजों का निर्माण किया किसी विशिष्ट परिस्थितियों में
and at the time that was the best solution
और उस वक्त यह सबसे अच्छा मार्ग था
some historians think that quite a distortion grew after the Buddha's time
और कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि बुद्ध के समय के बाद फिर ऐसी डिस्टॉर्शन यानी उसका नुकसान होना शुरू हुआ
well, we know that Samrat Ashok tried to reform the Bhikshu Sangha
हमें ज्ञात है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध यानी भिक्षु संघ का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की
because he found that many bhikshus were wearing the sacred thread under the yellow robe
क्योंकि सम्राट अशोक जी ने यह पाया कि बहुत सारे जो भिक्षु हैं अपने चीवर के नीचे वो जो जनेवा जो है पहनते
हैं। In other words, the Brahmins were just taking a new way.
New dress.
Yeah.
क्योंकि वो जो ब्राह्मण थे, उन्होंने केवल अपना क्या हो गया परिषेद जो है या पोशाक जो है
So we follow Baba Saheb and Sangharakshita himself has come to the conclusion we need to start again.
तो स्वयं बाबा साहब की यह इच्छा थी संघर्षित की भी इच्छा थी कि एक नई ऊर्जा या नया ऐसा कुछ होना चाहिए
What we need to start with is whether human beings, whether individuals are deeply committed to the Buddha Dhamma and Sangha.
क्या सबसे महत्वपूर्ण है कि एक इंसान के नाते क्या वह गहराई से शरण गमन करता है बुद्ध धर्म और संघ का
Whether they're living like lay people, whether they're living like monks.
वे भिक्षु रहे या सामान्य लोग रहे
And there shouldn't be that sort of hierarchy that is so common in the Buddhist East. Yeah.
तो जो एशियाई जो बौद्ध समाज है उसमें यह जो उच्च निष्ठा या जो हायरार्की जो थी असमानता जो थी वह नहीं होनी चाहिए
You get that even as between men and women.
यह महिलाओं में और पुरुषों में भी हम देखते हैं
You know, the most senior bhikkhuni is junior to the most junior bhikshu.
वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी सीनियर भिक्षुनिया है जो नया जो भिक्षु है उसके इसके लिए वो सीनियर है
But many women have a very great spiritual understanding and attainment.
और बुद्ध के समय में भी बहुत सारी महिलाएं जो थी जिनको बहुत आध्यात्मिक उपलब्धियां हुई
In our order we find there are many women who are the teachers of many men.
हमारे अपने संघ में ऐसी कई महिलाएं हैं जो पुरुषों की शिक्षक है
So we say, let's come away from all these old systems.
तो एक ऐसी बात आइए ऐसा कहते हैं कि यह जो पुरानी जो उच्च निष्ठा की या असमानता की जो परंपरा है उससे परे जाना चाहिए
At the time of the Buddha it worked, the society was different then.
क्योंकि जब बुद्ध स्वयं थे तब समाज अलग था
But now what we want is those who are really committed to the Buddha, Dhamma and Sangha.
लेकिन अभी क्या जरूरत है कि हर इंसान जो बुद्ध धर्म और संघ के प्रति गहरा शरण गमन
So within our order some may take an anagarika vow.
तो हम में से कुछ ऐसे धर्मचारी हैं जो अनागारिक होने की शपथ लेते हैं
They may therefore wear a yellow robe.
और वे जो चीवर है उसको धारण करते हैं
But they will not have any senior position because of that.
लेकिन केवल उन्होंने कपड़े पहने इसलिए मैं आप सबसे ऊपर ऐसा वो नहीं सोचते
So for us we're sort of taking a new stand.
तो इस तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि यह एक नया कदम है
But we don't want to offend anybody, we're not against anybody.
लेकिन हम किसी के विरोध में नहीं है या किसी को हम दुखाना नहीं चाहते
And we can work in good cooperation with good bhikshus who are really dedicated.
और हमेशा ही जो लोग जो भिक्षु है जो गहरा धर्म का आचरण करते हैं उनके साथ हम काम कर सकते हैं
Many bhikshus know the problem.
और बहुत सारे भिक्षुओं को भी यह समस्या पता है
just speaking to a bhikshu quite recently.
अभी मैं भिक्षु के साथ मेरी बात हो रही थी
And he was asking about our approach.
और वह पूछ रहे थे कि आपका जो दृष्टिकोण है वह कैसा है
He was a little bit critical.
वो थोड़े से आलोचक थे.
So I said, well, with great respect, we know that so many bhikshus are corrupt. They're not really there to practice the dhamma.
मैंने उनको बड़े आदर भाव के साथ कहा कि क्या आपको लगता है कि भिक्षु आचरण नहीं करते या ऐसे कुछ काम करते हैं?
And he said, I know the bhikshu sangha.
उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षु संघ के बारे में बहुत अच्छी तरह ज्ञान है.
In other words, he agreed with me. He knew.
दूसरे शब्द में वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके साथ पूरा सहमत.
But there's no alternative for people who have a sincere dedication.
तो उन लोगों के लिए क्या पर्याय है कि जो लोग सही मायने में धर्म का गहरा आचरण करना चाहते हैं?
And there's no alternative for lay people who have a really deep commitment to the Buddha Dhamma.
और जो उपासक है या जो सामान्य लोग हैं जो गहराई से धर्म को समझना चाहते हैं, उनके लिए क्या पर्याय है?
So we think we should make a new start where commitment is the main thing.
और हमको यह लगता है कि ऐसी नई शुरुआत करनी चाहिए जहाँ शरण गमन सबसे केंद्र में है.
It is the fact that you are deeply committed to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारा बुद्ध धम्म संघ के प्रति गहरी श्रद्धा और शरण गमन.
That's the most important thing.
यह सबसे महत्वपूर्ण.
Not whether you're a monk or a lay person.
यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप फिर भिक्षु है या उपासक है.
Whether you're a woman or a man.
आप स्त्री है या पुरुष है.
Indian or English.
आप भारतीय है या इंग्लिश.
Old, young.
आप बूढ़े है या युवा है.
Educated, uneducated.
आप शिक्षित है या अशिक्षित है.
What matters is that you are deeply committed to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
क्या सबसे महत्वपूर्ण है कि बुद्ध धम्म संघ के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा और शरण.
So we're trying to start again.
तो यह फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता है.
We are not perfect.
कोई भी संघ आदर्श नहीं.
I just wanted to say this one thing.
One question.
I just wanted to say that one thing because it's very important. Hold your question. We are not claiming that we are perfect.
हम ऐसा नहीं कहते कि हम सबसे आदर्श हैं.
We have our own problems.
हमारे अपनी समस्याएं हैं.
And you know, sometimes we behave badly.
और हो सकता है कभी-कभी हमारे से भी बुरा सलूक होता है.
But generally speaking, amongst us, there's a high standard of spiritual commitment.
लेकिन निश्चित रूप से जो लोग भी जुड़ते हैं, हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि उनका जो आध्यात्मिक स्तर हो वो ऊंचा रहे.
But I did want to say that we're not pretending that we're perfect.
लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि हम कहते हैं कि हम ही आदर्श हैं, ऐसा हम नहीं कहते.
You probably seen already, we're not perfect.
आपने देखा होगा कि हम लोग आदर्श नहीं हैं.
Anyway, your second question.
मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है सवाल करने से कि मैं आपको उलझाना चाहता हूँ, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए ही ये सब प्रश्न किए गए हैं, लेकिन मेरी जानकारी बढ़ाने के लिए भी इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है.
मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है उनको बताना. I would like to just clarify that I myself wanted to do more deeply about this, and the people among us, they should know clearly.
Yeah.
I have no intention to really have some critical question about it.
Sure. Yeah. Well, the critical questions are important because they allow one to explain and go deeper. Yeah.
जो आलोचनात्मक सवाल होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आपको आपको संपर्क के साथ वह उनकी समझ में गहरा ले जाते हैं.
So I welcome a critical question.
तो मैं आपके प्रश्नों का स्वागत ही करूंगा.
बात निकल के आई सम्राट अशोक ने जो जनेऊ धारण भिक्षु थे अंदर जनेऊ पहन रखा उनको निष्कासित जैसा किया और बलियां कर
दिया.
तो हमारा जो त्रिलोक महासंघ है क्या गारंटी है कि वो इसमें ऐसे जो पेट पालने वाले हैं कमाने खाने वाले हैं वो इसमें भी नहीं पाए या नहीं पाए हैं?
He was saying that. You got the question.
Yeah. What guarantee do we have that there's not the same corruption?
Same genuine, just for the belly.
Right.
Sake of belly, some people can join this order.
Yeah. Well, the first thing is that you get no material advantage from being a member of this order.
Sorry?
Nobody at the moment gets any material advantage from being a member of the order.
मैं यही कहना चाहूंगा आज के कम से कम आज तक जो भी धर्मचारी हुआ उसको कोई भी भौतिक लाभ नहीं.
We don't support order members just because they're order members.
हम धर्मचारियों की मदद नहीं करते अगर वो धर्मचारी बन जाते इसलिए.
He's living off his state scholarship.
मैं अपने यानी जो मुझे स्कॉलरशिप मिलती है उसके ऊपर ही मैं अपना जीवन जीता हूँ.
I'm living from a pension from the British government.
मैं जो जीवन कर रहा हूँ, मैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पेंशन होता है उसपे मैं मेरी यानी आजीविका.
He's living off donations given to me for supporting him.
जो मुझे दान मिलता है मैं उनको देता हूँ जो ताकि उनका गुजारा चले.
But technically speaking, he's not even getting the minimum wage from the English British the British government insists on.
तांत्रिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो इसको बेरोजगारी भत्ता कहते हैं ना, तो वो बेरोजगारी भत्ता भी उनको अपने देश में नहीं मिलता.
So at the moment we're not subject to that sort of corruption.
तो निश्चित रूप से इस क्षण पे मैं यह कहूंगा कि ऐसे कोई भी भौतिक सुख की लालसा रखकर आज तक संघ में दाखिल नहीं हुआ.
But in the future, who knows?
भविष्य किसने
बताया? Eventually, no doubt, we will have these problems ourselves.
निश्चित रूप से ऐसे 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 जो कठिनाइयां हैं वो हर संघ के सामने आती.
There's very little prestige or benefit associated with being a member of this order.
एक ब्रह्मचारी होने के नाते बहुत ही कम उनको पद प्रतिष्ठा और इस तरीके का जो हम सोचते हैं वह मिलता है.
But if we become successful, maybe there will be.
अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो हो सकता है शायद ऐसा इसमें भी हो.
And then we have to be much more careful in selecting people.
लेकिन उसके बारे में हमें बहुत ही सावधानी रखनी होगी जब हम लोगों का नियुक्ति करें, उनका चुनाव करें, चयन करें.
But you're right, in the end there's no guarantee.
लेकिन यह बात सही है कि अंततः कोई भी किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता.
But what we try to do is keep alive a very strong sense of communication amongst us.
तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम में जो संवाद है वह बहुत जिंदा रहे, जीवित रहे, यह हम कोशिश करते हैं.
And we're very strongly encouraged to talk about things with each other.
और हम बहुत लोगों को प्रोत्साहन करते हैं कि आपके में आपके बारे में वह स्पष्ट कहे, अपने आपके बारे में बताए.
We have members of our order meet once a week for an order meeting.
जिसे हम धर्मचारियों का संघ कहते हैं या उसका गुट कहते हैं, जो प्रति सप्ताह इकट्ठा आते हैं अपने अपने प्रदेश में वह मिलते हैं.
In that order meeting, we're supposed to confess any transgression that we've made.
और उसमें उस मीटिंग में हम पाप देशना करते
हैं. पाप देशना, yeah.
उस गुट में हम पाप देशना करते हैं. कोई भी अगर हमसे गलती हुई उसको हम स्वीकारते हैं.
And we're supposed to raise with each other any criticisms observations that we've made.
और एक दूसरे का जो निरीक्षण है, उनकी जो आलोचना है, उसका हम गहराई से वहाँ चिंतन करते हैं.
And as long as that's alive, perhaps we're likely to be a little bit more spiritually pure.
जब तक यह जीवित है, धार्मिक रूप से हम पवित्र आचरण करने में कामयाब रहेंगे.
But people fall back.
लेकिन लोग हमेशा ही पीछे आ जाते हैं.
Until stream entry, until shraddhapanna, you can fall back.
जब तक कोई भी व्यक्ति श्रोतापन्न नहीं होता वो हमेशा ही धर्म जीवन में नीचे गिर सकता है.
And I've seen that happen to my brothers and sisters, some of my brothers and sisters.
और मेरे कुछ भाई बहनों के साथ मैंने यह देखा है.
But at the moment we have still a quite lively spiritual culture.
लेकिन अभी तक ऐसा ही बहुत ही यानी जीवित आध्यात्मिक संस्कृति का निर्माण हमने किया है.
But there's no guarantee in life.
जीवन की ऐसी कोई भी गारंटी नहीं होती.
Until stream entry, there's no guarantee.
जब तक आप श्रोतापन्न नहीं होते तब तक इसकी कोई गारंटी नहीं होती.
That's why we must achieve a deep realization of the Dhamma.
इसीलिए धम्म का एक गहरी जो समझ है उसको जितना यानी हमें पाने की आवश्यकता है.
At the time of the Buddha, there were many, many Shraddhapannas amongst lay people as well as bhikshus.
बुद्ध के समय में भिक्षुओं में और उपासकों में ऐसे कई श्रोतापन्न बुद्ध के वर्ण थे.